نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير Amazed by Allah's small husna, इस सीरीज में हम आज अल्लाह सुबहान तआला का प्यारा नाम अल मुसव्विर करेंगे. नाम से हम मानूस हैं. यह लफ्ज़ हमारी उर्दू ज़ुबान में भी आता है. लफ्ज़ मुसव्विर भी आता है, तस्वीर भी आती है, सूरत भी आती है. और अगर मैं आप में से किसी से पूछ लूँ कि इसका लफ्ज़ी माना क्या होगा, तो शायद ही कोई इसके उस लफ्ज़ को जानता हो जिसकी वजह से इस लफ्ज़ को मुसव्विर या फिर सूरत या कुछ और कहते हैं. और सिर्फ आपका शौक़ उभारने के लिए, ताकि आप अल अस्माउल हुस्ना सीरीज़ के ज़रिए से कुरान पाक को भी गहराई में सीखने की नीयत कीजिए, तो लफ्ज़ सूर, सूर फूका जाएगा. फ़ाइज़ा नफ़ीख़ा फ़ैसूर, वो लफ्ज़ भी इसी से है. स्वाद व औरा का लफ्ज़ी माना होता है माइल करना, टू अट्रैक्ट. क्या मतलब जी? तस्वीर माइल करती है. अमूमन लोग कहते हैं पिक्चर ब्यूटी. पिक्चर ब्यूटी क्या होती है? आम से ज़्यादा खूबसूरत होता है. और आज तो अल्लाह रहम करे उन कैमरे बनाने वालों को कि जिन्होंने अपनी उम्र से 10 साल छोटी भी तस्वीर कर लीजिए, उसको पीली आंखें कर लें, नीली कर लें, और न जाने क्या पुतलियां बनाकर अपनी प्रोफाइल्स पे लगाइए, और दूसरे फिर देखकर आपकी खूबसूरती के नशे में, और शादी से अगले ही दिन क्या उसी दिन गड़बड़े शुरू हो जाएं. ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह. लेकिन ये बात देखी गई है कि कुछ लोग आमतौर पर वाजबी शक्लो सूरत के होते हैं, लेकिन तस्वीरों में बहुत खूबसूरत लगते हैं. तो लफ्ज़ अल मुसव्विर यही है, यानी सूरत. सीरत में क्या है कि अट्रैक्ट करती है तस्वीर आपको. फिर जो सूर का लफ्ज़ है, फिर वो कहाँ से आ गया, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना. तो आप देखिए कि सूर की आवाज़ में कशिश होगी. फ़ैज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूर, जब आप अल्लाह ताला के नाम अल मुसव्विर को समझ जाते हैं ना, तो फिर अल मुसव्विर का लफ्ज़ी माना क्या बना आपकी मेरी इस छोटी सी बात को समझने का, कि अल मुसव्विर वो हस्ती है जो तस्वीर को बनाए, सूरत गरी करे. अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी इस खूबी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा है. तो मुसव्विर वाओ के ऊपर तशदीद है, मुसव्वर युसव्विर तस्वीर से, यानी सूरत गरी करने वाला, पिक्चराइज करना. एक दौर था कि लोग हाथ से तस्वीरें बनाते थे. आज भी लोग इसको आर्टिस्ट के नाम से या किसी और के नाम से जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कल्चर था. अब तो टेक्नोलॉजी ने इतना इम्प्रूव कर लिया कि आपके क्या बच्चों के हाथों में कैमरे हैं, मासियों के हाथों में कैमरे हैं, लेकिन यह है कि एक वक्त था कि लोग मुसव्वरों के पास जाकर उनसे अपनी हैंड मेड पिक्चर या तस्वीर बनवाते थे, और फिर बड़ी महंगी बिकती थी. आज भी हैं लोग ऐसे काम करने वाले, लेकिन बहरहाल वो क्या है, उसकी क्या हैसियत है, आज के इस नाम को पढ़ने के दौरान इंशाल्लाह एंड पे हम इस पर बड़ी डिटेल से बात करेंगे. तो फिर अल मुसव्विर, स्वाद वौरा, सूरतें बनाने वाला. कुरान पाक में अल्लाह ताला का ये नाम एज अ नाम अल के साथ सिर्फ एक ही दफ़ा है, और वो सूरत अल खशर की आयत 24 है, जो कि हम देख ही रहे हैं. अल खालिक वल बारियु और अल मुसव्विरु. अगर इसको थोड़ा मज़ीद खोल कर देखें तो खूबसूरत तरतीब देकर बनाने वाला, शक्ल देने वाला, मुतनासिब आज़ा बनाने वाला, यानी अल्लाह ताला सिर्फ तस्वीर बना नहीं देते, बल्कि उसकी नोक पलक दुरुस्त करके, एक इंच क्या, एक पॉइंट इंच का भी फ़र्क नहीं है एक आँख से दूसरी आँख में, एक टांग दूसरी टांग से ज़रा सी छोटी हो जाए तो इंसान चल नहीं सकता, कहाँ बाकी काम वो कर सके. तो अल्लाह सुब्हानहु ताला के अल मुसव्विर होने को सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी शक्लो सूरत से ही ना देखिए, आप इसमें देखेंगे कि कैसे अल्लाह सुब्हानहु ताला ने अपने आप को हमारे लिए पेश किया. फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब अल्लाह ताला के इस नाम को देखते हैं, तो इसके बारे में अल्लामा खत्ताबी हैं, वो कहते हैं कि अल मुसव्विरु हुवल्लज़ी अनशा خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها. المصور جل جلاله وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوق کو مختلف صورتوں پر پیدا کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے ایک دوسرے کو پہچان سکیں. پھر آگے دلیل میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو بیان کرتے ہیں. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, وہ جس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور پھر کیا خوب صورتیں بنائیں. और ये जो आयत है, ये सूरत अल गाफिर की 64 है. तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे से मुख्तलिफ करने के लिए हमारी मुख्तलिफ सूरतें बनाई. ज़रा सा तसव्वुर में लाइए, अरबों खरबों सूरतें हैं दुनिया में, जितने लोग उतनी शक्लें, जैसे पीछे भी हमने बात की थी कि आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं वो भी नहीं असल में आपस में मिलते हैं 100%, तो कितने लोग हैं? अगर सब एक ही शक्ल सूरत के होते तकाबुल करेंगे आगे जाकर हम इंशाअल्लाह ताला। तो कैसे अल्लाह ताला इंसानों को मुख्तलिफ तरह से बनाता है, और फिर सिर्फ सूरत नहीं, शक्ल, डेल डोल, कद, काठ, आंखों का रंग, बालों का रंग, अदा, फिर इमोशन, फिर जज्बात, फिर सूरत के साथ साथ सीरत, आदत, अतवार। एक माँ के पेट से निकले हुए चार बच्चे लगता नहीं है वैसे कि एक ही कोठरी में से आए हैं। तो अल्लाह ने आपकी मेरी पहचान बनाई, पता चला कि काम गलत किसी एक ने किया तो पकड़ा दूसरा गया, जेल में कोई चला गया, और इसी तरह से उधार आपने किसी एक से लिया तो देने के लिए वापस दूसरे को चले गए, बाद में कहा किधर गए। तो अरबों खरबों लोग जब अल्लाह की सिनफत के हामिल है तो सोचिए वो कितना बड़ा अलमुसविर होगा। हमारे तो डिज़ाइन ही खत्म हो जाते हैं थोड़े अरसे बाद, कहते हैं अब क्या बनाएं, और कोई पैटर्न नहीं है। यानी ये जो कल हमने अलबारी के साथ देखा था ना, तो बेसिकली पैटर्न के साथ हम तो जोड़ जोड़ के बनाते हैं ना, तो अल्लाह ताला तो बगैर किसी चीज़ के बनाते हैं। तो जब अल्लाह सुबहाना ताला ने आपकी मेरी मुख्तलिफ सूरतें बनाई हैं तो इसके कुछ मकासद हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हर एक का तशख्स जुदा हो, बिल्कुल आइडेंटिटी, यूनिकनेस। आप देखिए कि रंग, शक्ल, नकल से इंसान की काफ़ी ज़्यादा पहचान हो जाती है। इंग्लिश में कहते हैं फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरे पे लिखा होता है कि आपका जहन इस वक्त क्या सोच रहा है। फिर इस तरह आप देखिए कि ख़ास मकसद और ज़रूरत के तहत हर चीज़ की पैदाइश की अल्लाह ने, सिर्फ इंसानों की सूरतें नहीं। मसलन देखिए हाथी कैसा होना चाहिए, उसकी इतनी लंबी सूंड है, ऐसे ही होना चाहिए। वो अपनी खुराक ऊंचे ऊंचे दरख्त के पत्तों से कैसे लेगा बेचारा इतना भारी जिस्म वाला। वो अपनी सूंड को ऊपर करता 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 वहां से पत्ते लेके रोल करके अपने मुंह में डाल लेता है। जराफा का देखिए गर्दन कितनी लंबी होती है, घोड़े को देखिए। और इसी तरह अल्लाह ने हर एक चीज को, सिर्फ ये नहीं कि इंसान, जानवर, बिल्लियां, कुत्ते, ये अल्लाह की शान है कि उसने इतना कुछ किया। और फिर इसी तरह ज़रूरत के मुताबिक सलाहियतें भी दी। फिर जिस चीज़ को जो दिया, मसला आप देखिए कि अगर चींटी के मुंह में दांत नहीं है तो उसको कोई सख्त चबाने वाली चीज़ भी नहीं दी है, बंदर केले खा लेते हैं। हर एक को अल्लाह ने इतने खूबसूरत तरीके से बनाया, और फिर सबसे बढ़ के इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया। अल्लाह अकबर। और इंसान के साथ ज़रा एक और कैटेगरी कीजिए आगे, औरत अलग मर्द अलग है। ज़रा सोचिए अगर औरत मर्द की शक्ल की हो जाए कैसी लगे बंदी। मैं कहती हूँ औरत और मर्द की बात छोड़िए, बच्चे की शक्ल बड़े की हो जाए ना, नीचे धड़ छोटा हो और चेहरा बड़ा हो तो इतना खौफनाक लगता है, और इसी तरह इसका उलट भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बड़ा इंसान है और चेहरा बिल्कुल बच्चों की तरह राल टपक रही है, तो अल्लाह को पता था कि औरत मर्द, लड़की लड़का कैसा हो। फिर आप देखिए कि हमारी अपनी ज़िंदगी में एक ही, हमारी ज़िंदगी अपने ऊपर लीजिए आयम, क्या पिछले 20, 25, 30, 35 साल से आपकी एक ही शक्ल है? बचपन में आप कैसी थी, फिर जवान होने से पहले कैसे, जवानी कैसे। ये जो एल्बम्स तस्वीरों के संभाल के लोग रखते हैं, पहले दौर में तो लोग कहीं अलमारियों में रखते थे और कोई आता था तो खोल के दिखाते थे, ये देखिए हमारी तस्वीरें, और कितनी शर्मिंदगी होती थी जब कहते ये आप हैं। अल्लाह हो, बस इसी में वो सब हौका लग जाता है कि अच्छा ये लग तो आप नहीं रही, ये आपको क्या हो गया। अब तो खैर माशाल्लाह क्या कहने, हम तो अपने हाथों में अपने कैमरे लेकर फिरते हैं। तो याद रखिएगा कि अल्लाह की कुदरत है, उसका कोई शरीक नहीं है, गैर अल्लाह के लिए तो तकबर जायज़ ही नहीं है। अल्लाह सुबहाना ताला ने इतनी प्यारी सूरतें बना दी तो ज़रा सोचिए कि वो खुद कैसा होगा। इसीलिए फिर तस्वीर साजी भी अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज़ नहीं है। कोई ऐसा करता है तो असल में वो अल्लाह ताला के मुकाबले पे खड़ा होने की कोशिश करता है। और इसी तरह से आप देखिए कि तस्वीर होती क्या है, यानी आपके जहन में एक चीज़ आ सकती है कि आखिर तस्वीर कहते किसको है। तो बुनियादी तौर पे जो तस्वीर है वो नक़ूश को कहते हैं, इमेजेस, नक्श। एक चीज़ दूसरे से मुमताज़ हो जाती है, इसकी दो मुख्तलिफ किस्में हम देख सकते हैं। एक होती है महसूस, जिसको महसूस कर सकें, यानी ख़ास हो या आम लोग हों, जानवर हो, परिंदा हो, घोड़ा हो, जमादात हो, कोई भी, बस उसको देख के सबको पता चलता है ये घोड़ा है, ये फूल है, ये फलां है, ये फलां है। और एक होती है गैर महसूस। गैर महसूस तस्वीर वो होती है जो ख़ास ख़ास लोग जानते हैं, अवाम उसको नहीं जान पाते, और उसके अंदर भी कई खसूसियात एक से दूसरी हो जाती हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को देखिए तो कुरान पाक में अल्लाह ताला की इस सिफत को कहाँ कहाँ बयान किया गया। मसलन आप देखिए सूरत अल आराफ की आयत 11 में आता है, खलकनाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरतें बना दी। यानी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मराहिल को सामने रख कर देख लीजिए तो पहले तख्लीक थी। आज आपको समझ आएगी वो बात जो कहा कि तख्लीक में तकदीर है, फिर अलबारी होना तनफीज है, और सब वर्णनाकुम क्या है उसके फाइनल टचेज हैं। फिर पल कैसे जाते हो, जैसे हम घर बना लेते हैं फिर ढांचा खड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर प्लस्टर्स होते हैं और सब कुछ होते हैं, ये कह लीजिए कि बीच की स्टेज होगी अलमारी की, और फिर खूबसूरत शेंगलिट्स लगते हैं, फिर उसमें शीशे लगते हैं, बाथरूम में सैनिटरी फिट होती है, तो ये सब वर्णनाकुम है। तो अल्लाह ने इंसान की तस्वीर को कैसे मुकम्मल कर दिया। फिर इसी तरह तगाबुन 3 में आता है, सब वरकुम फ़ख़सना सुवरकुम, उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत ही अच्छी बनाई, क्या खूब बनाई। सूरह इन्फितार की आयत 8 में आता है, फी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। जरा सोचिए, नाक पेट पे लगी होती, एक आंख बीच में होती, आधा होंठ कटा होता, कैसे लगते हम, शक्ल छुपाते। आज तो हमारा मुश्किल है ना मरहला, हाय ये इतनी प्यारी शक्ल है तो इसको छुपाएं क्यों। और लोग कहते हैं कि जब दी है उसने खूबसूरती तो दिखाइए फिर, तो जिसने खूबसूरती दी उसने उसके साथ कुछ अदब और मैनर्स भी तो दिए ना। लेकिन जरा सोचिए तो सही, आप अपनी आंख को सोचिए, अगर आपकी आंख भैंस इतनी बड़ी होती तो क्या करनी थी, एक ही लग जाती, एक तरफ आंख लगी होती दूसरी तरफ कान लगा होता, कैसे ड्रैकुला लगते। अपने बच्चों को डिफॉर्म्ड पिक्चर्स यानी कार्टून्स का आदीना बनाइए, ये शुरू से ही उनके ज़िंदगी में एक बेमकसदियत और डिटॉर्शन डाल देता है। इंसान बड़ी इज्जत वाला है, वलकद करोमना बनी आदम, अल्लाह ने इंसान को बड़ी इज्जत दी, तो शक्लें बिगाड़ बिगाड़ के बच्चों को दिखाते हैं वो फन नहीं है, असल में वो उनका फन बनाना है कि तुम दुनिया में एक बेकार पुर्जे बन के आ गए। और फिर सूरत आले इमरान आयत नंबर 6, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह चाहता है बनाता है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो गालिब है और हिकमत वाला है। आप देखिए कि इसमें कैसे अल्लाह की कुदरते कामिला और उसके कादरे मुतलक होने का जिक्र है, कैसे इंसान को माँ के पेट के 3 अंधेरों में हिकमतुन बालिगतुन के साथ बनाया, फिर उसकी सूरत, उसके रंग, उसके नैन नक्श, उसकी आंखें, और फिर अरबों खरबों में से कोई एक दूसरे से न मिले, क्या ये अल्लाह के इल्मे मुहीत की दलील नहीं है, ये उसकी कुदरते कामिला की नहीं है। तो लिहाजा फिर इसी का तकाजा है कि इबादत सिर्फ उसी की जाए, दुआ सिर्फ उसी से मांगी जाए, उसके सिवा सब के सब इल्म और कुदरत में ये मुकाम रखते ही नहीं। आप कह दीजिए कि ला इलाहा इल्ला हुआ, लायक इबादत वही है। फिर इसी तरह अल्लाह सुबहाना ताला ने सूरत 3 की आयत 4 में फरमाया, लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला इंसान को जिस तरीके से बनाते हैं, जो कुछ उसके अल्लाह ताला ने मामलात रखे हैं, वो सारी चीज़ें इंसान के सामने रहें, तो ये कभी हो नहीं सकता कि वो अल्लाह को छोड़कर किसी और की तरफ भागने लगे। सूरत ज़ुमर में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, यखलुकुकुम फी बुतूनी उम्महातिकुम खल्कम मिन बादी खल्किन फी ज़ुलुमाति सलास, वो तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों में एक बनावट के बाद दूसरी बनावट पर बनाता है 3 3 अंधेरियों में। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या वो काम करता है। और आयत 6 है सूरह ज़ुमर की, तो क्या पता चला कि अल्लाह को किसी बंदे से कुछ पूछने की और उसके मामले में कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं, वो जो चाहे करे। कैफ़ यशा, आपकी मेरी सूरत, आपका मेरा कद, आपकी मेरी नाक, आपका मेरा कॉम्प्लेक्शन, आपके मेरे बालों का रंग, पलकों का रंग, मेरी आपकी एक एक चीज़ मेरे रब का फैसला है। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या खूब बनाया उसने, खलकम मिन बादी खलकिन। तो खुलासा करते हैं अभी तक जो अल्लाह ताला की सिफात की हैं, इसी सिफात में याद रखिए आगे 2 और भी आएंगी, वो भी बताती हूँ। अल खालिक को देखा था, वो कौन, वो जो सब मखलूकात को अदम से वजूद में इन सिफात में लाने वाला है जो उसके मुकद्दर में है। उससे अगली स्टेज देखी थी अल बारी की, लोगों को मट्टी से पैदा करने वाला, जी अल बारी का नाम मट्टी से बनाने वाला भी है। और फिर आज हम देख रहे हैं अल मुसव्विर, मुख्तलिफ शक्लों सूरतें बनाने वाला। आप कह सकते हैं कि अल खालिक आम है और बारी खास है और अल मुसव्विर खासुल खास है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला का नाम अल फातिर भी आएगा, सबका फर्क भी इंशाल्लाह उस दिन बता दूंगी जिस दिन उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या पता चला, अल मुसव्विर में क्या दर्जा है, तस्वीर बनाना। तस्वीर बनाना क्या होता है, एक चीज को उसकी आखिरी मुकम्मल सूरत में बना दिया जाए। आप देखिए खाना भी पकाते हैं ना तो बाद में गार्निश करते हैं, फिर प्लेटों में डालकर ऊपर कोई सैलड काट के डाला जा रहा है, बॉयल्ड एग्स डाले जा रहे हैं, केक बना लिया जाता है जल्दी में, खूब किचन फैला फिलू के सारे घर में, और फिर उसके बाद में ऊपर अच्छे अच्छे तरीके से खूबसूरत फ्रूट्स और चेरीज और स्ट्रॉबेरीज लगा दी जाती हैं। तो जब ये आखिरी शक्ल आती है ना, ये तीनों काम अल्लाह के कामों के अंदर अगर रखें तो इसको इंसानों के कामों से कोई मुशाबहत नहीं है। इंसान का कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जो पिछले नमूनों से निकलता ना हो, मगर अल्लाह का हर मंसूबा हर प्रोजेक्ट बेमिसाल है, इसकी अपनी इजाद है। इंसान जो कुछ भी बनाता है अल्लाह ताला के पैदा करदा मादों को जोड़ जाड़ कर बना देता है। वो किसी चीज़ को अदम से वजूद में नहीं लाता, बल्कि वो जो कुछ वजूद में लाया है वो मादा भी बजाय खुद उसी का पैदा किया हुआ है जिससे इसने ये दुनिया बनाई। तो कह सकते हैं कि सूरत करी के मामले में भी इंसान मूजित नहीं। आप मेकअप करते हैं पर किस पे? उन्हीं आंखों उन्हीं चेहरों और चिक्स को सजाते हैं जो अल मुसव्विर ने आपको दे दी। अगर अल्लाह ने आपको मुझे शक्ल ही ना दी होती तो हम क्या इसके अंदर और रंग अमेजी करते? तो आप कह सकते हैं कि इंसान तो सूरतें बनाने में भी अल्लाह ही की नक्काली करता है, अल मुसव्विर है असल में। फिर हर जिन्स हर नौ हर फर्द की सूरत में जो बनाया तो ये तो खूबसूरत से खूबसूरत बात है। आइए देखते हैं कि सलफ सालेहीन अल मुसव्विर के बारे में क्या कहा करते थे। तो इमाम बगवी हैं, वो कहते हैं कि मखलूक की ऐसी तस्वीरी अलामतें बनाने वाला कि इनमें बाहम इम्तियाज हो जाए। आज आपको पता चला कि आपकी शक्ल आपकी बहन से मुख्तलिफ क्यों है, एक भाई दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है, ताकि इम्तियाज हो जाए। पता चले दो दफा एक ही मामा से आइसक्रीम लेके चला गया और दूसरा भूखा रहा। कभी सोचिए, मामा कहेगी ले तो गए, कहेगा नहीं मैंने तो नहीं ली। अच्छा वो पहले वाले ही दो दफा ले गया, इम्तियाज। और फिर इसी तरह से आप देखिए, बंदे को सूरतुल अमर यानी उस काम की मिसाल है। अल्लाह सुबहान तआला चाहते हैं कि बंदा जो काम कर रहा है वो उसके साथ अपने आप को मैच भी करता देखे। कहते हैं ना शक्ल देखिए सूरत देखिए। फिर आप देखिए कि शुरू में अल्लाह ने अंदाजा किया, फिर वजूद का जामा पहनाया और फिर सूरतगरी कर दी। तो लफ्ज़ अल मुसव्विर, जब आप इसकी खसूसियात पे गौर करते हैं ना तो आपको दुनिया की एक एक चीज़ को देखने का बिल्कुल नया रंग मुख्तलिफ अंदाज दिखता है। आप हैरान हो जाते हैं ये क्या हो रहा है, यानी चीज़ों की तस्वीर बनाने वाला, उनको तरकीब देने वाला। तरकीब कहते हैं रकबा से, राकिब सवार को कहते हैं ना, तो तरकीब क्या हो, सवार करना, इसको इधर लगा दो, इसको इधर जड़ दो, इसको इधर कर दें। आप देखिए ना जरा कोई चीज़ आप भी बनाएं तो आप भी सोचते रहते हैं ये मोती इधर लग जाएंगे, बेल इधर लगा लेंगे, इस पे थोड़े सितारे लगा लेते हैं, ये है तरकीब। फिर मखलूक को पहली बार पैदा करने वाला जिसने तमाम मौजूदात को पैदा किया, इन्हें अपनी हिकमत के साथ ठीक ठीक बनाया और अपनी हम्द और हिकमत के साथ इनकी सूरतगरी की। अल्लाह को पता था खजूर का दरख्त लंबा ही होगा तो ठीक होगा, अरब के सहराओं में अगर छोटे कद की खजूरें होती तो उतनी मीठी ना होती। अल्लाह सुबहान तआला ने कैसे ये सारा कुछ कर करा के आपको मुझे दिखा दिया कि हम बेहतरीन तरीके से उनसे फ़ायदा उठा सके। इसी तरह देखिए कि बेल को ज़मीन पे बिछा दिया, नरम नरम बेलें हैं और उस पे तरबूज और कद्दू और इसी तरह खीरे और ककड़ियाँ क्या कुछ नहीं लगा दी। तो गोया कि जिस चीज़ को जहाँ जैसा करना था हिकमत के साथ कर दिया। कभी तवील कभी पस्त कभी हसीन, कोई मुजक्कर है तो कोई मुअन्नस है। और अल्लाह ने माओ के रहमों में इजसाम पैदा किए, फिर उनमें रूह फूंक दी। तो फिर आप ज़रा एक और रंग से देख लीजिए अल मुसव्विर को, कायनात की हर मखलूक को बनाने वाला। सोचिए ज़रा, आपने बॉटनी तो पढ़ी होगी ना, जोलॉजी भी पढ़ी हो सकती है, कितनी स्पीशीज है इंसानों की, फिर जानदारों की कितनी है, फिर सी वर्ड में क्या कुछ है, फिर प्लांट्स कितनी किस्म के हैं, फिर उसके मेल एंड फीमेल, उन सब को बनाने वाला अल मुसव्विर। सोच लिया आपने, कायनात पे एक मोटी सी नज़र डाल के पहले सोचिए। फिर उसके बाद सब्जी मंडी चलते हैं, चले सब्जी मंडी यहाँ किधर होती है, फिएस्टा चलते हैं, HEB चलते हैं, खीवी पे चलते हैं, ज़रा फलों और फूलों को देखिए, प्लांट्स को देखिए, किसी नर्सरी में जाकर देखिए, ज़मीन पे चलते हुए हशरात कीड़े मकोड़े परिंदे, कभी चींटी पे गौर करके देखें आपका दिल करता है उसको किस कर लो, इतनी स्वीट इतनी प्यारी छोटी सी मुन्नी सी, और आप उसको देखते हैं कैसे दौड़ती दौड़ती जाती है। यकीन करें कि वो दुनिया देखने को मिलती है जो इंसान कभी तसव्वुर में नहीं कर सकता कि आप करब कैसे इन चीज़ों को लेकर चलता है। फिर आप देखिए कि हर जगह की मट्टी मुख्तलिफ, रंग मुख्तलिफ, आप दुनिया में घूमकर देखिए, आपको मिट्टी का रंग ही फर्क दिखेगा। अरब में चली जाइए तो सुर्ख मिट्टी दिखती है, सहराई रंग की। इसी तरह आप बाहर के मुल्कों में आते हैं तो ज़रा भूरी भूरी सी मिट्टी है। हमारे मुल्कों की मिट्टी जो है वो ज़रा मिट्टियाली सी मिट्टी है, कई जगह मिट्टी बिल्कुल सफ़ेद है, ऐसे पाउडर है। जी ये किसने किया? ये अल मुसव्विर का फैसला है। फिर इसी तरह देखिए, पहाड़ मुख्तलिफ रंग के हैं, सख्ती वाले हैं, समुद्रों का मुख्तलिफ रंग का पानी है। ये सब क्या है? वो कहते ना, ये क्या हो रहा है? ये इस बात का इजहार हो रहा है कि अल मुसव्विर के पास बहुत सारी वैरायटी है। अल्लाह सुबहाना ताला ने कैसे इंसान के लिए इस तरह से ये मामलात कर दिए कि खल्क मिन बादी खल्किन। कहते हैं कि औरत के पेट में एक आलम असगर बन रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो उसका बोझ बर्दाश्त करने की आदी हो जाती है। अब देखिए कि बेनज़ीर हसीन तरीन मखलूक को, जिसमें सैकड़ों नाजुक मशीनें हैं, बच्चे के अंदर क्या कुछ नहीं होता? उसके बाल के बराबर रगे हैं और खून और रूह बचाने के लिए अल्लाह ने लगा दिए। ये आम सनतकारों की तरह किसी खुली जगह रोशनियों की मदद से नहीं, बल्कि तीन अंधेरों में है और ऐसी जगह पैदा किए गए जहाँ किसी की नज़र तो क्या, किसी की फिक्र की रसाई न हो। फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। तभी तो अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो, अगर आप कुरान पाक में लफ्ज़ अल मुसव्विर को उसकी खूबियों के साथ देख लें तो हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़रा माँ के पेट के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको तो सोचिए। फिर आप देखिए कि बच्चे के अंदर एक एक सिस्टम है, 19-20 का फ़र्क होना तो पहले ही डॉक्टर कह देते हैं बच्चे के लंग्स ठीक नहीं है, उसका हार्ट ठीक नहीं है, उसके साथ ये मामला नहीं वो नहीं है। कौन करता है? और फिर सबसे बड़ी बात पता क्या है? पैदा होने वाले जानदार के माँ बाप के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। कव्वे का अपना काला बच्चा ही उसको बड़ा प्यारा लगता है और कबूतर को अपना मुन्ना सा वो कत्थे रंग का कबूतर बड़ा प्यारा लगता है, उसको सफ़ेद रंग वाले अच्छे नहीं लगते। कहते हैं कि पेरिस में एक दफ़ा हसीन बच्चों का मुकाबला हुआ। दुनिया के बहुत से माँ बाप अपने हसीन बच्चों को लाए तो एक स्याह फाम हबशी औरत थी, वो अपना ही बच्चा उठा के ले आई। कहने लगी, मुझे तो सारे शहर में यही प्यारा लगा है। और फिर जज साहिबान ने भी उसी बच्चे को सबसे खूबसूरत बच्चा करार दे दिया कि जिसकी माँ उसको हसीन तरीन बच्चा कहे वो अच्छा कैसे नहीं हो सकता। तो हुवल्लाहुल खालिकुल बारीउल मुसव्विर। और आप देखिए कि सूरह ज़ुमर की जो आयत 6 में अल्लाह ताला ने ये बात कह दी ना कि फ़ी ज़ुलुमातिस सलास ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्कु ला इलाहा इल्ला हुवा। जाकर दुनिया के किसी बड़े से बड़े पेंटर और किसी बड़े से बड़े आर्टिस्ट को ये आयत दिखा दीजिए, झुक जाएगा अंदर से। ये अलग बात है कि बाहर से ना झुके। एक जान से पैदा किया, फिर वही जिसने इस जान से जोड़ा बनाया, फिर मवेशियों में से 8 नर मादा पैदा किए, तुम्हारी माओ के पेटों में तीन तीन बारीक पर्दों के अंदर तुम्हें एक के बाद एक शक्ल ही देता गया। फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। तो क्या पता चला कि इंसान अहसनी तकवीम के साथ पैदा किया गया। अल्लाह सुबहान तआला ने इंसान को बड़ी इज्जत दी है। याद रखिए कि इंसान अशरफुल मखलूक है और मखदूमे कायनात है, सारी कायनात इसकी खिदमत कर रही है। क्या कहा कुरान में? व खलक मा फिल अर्दी जमीया। अल्लाह ने आदम को जब दुनिया में भेजा तो उसके फौरन बाद कहा कि सब कुछ तुम्हारे लिए तो दुनिया में बनाया, बस तुम मेरे बन जाओ। और यही हमसे नहीं होता। अल्लाह के बन के अल्लाह के नबी के तरीकों पे चलेंगे और जब ये बात समझ आ जाती है तो दुनिया की ज़िंदगी भी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। और याद रखिए कि इंसान अपनी खिलकत के एतबार से सब जानवरों से अफसल और आला है और फरिश्तों से कम दर्जा रखता है, लेकिन जब अपने इरादे और कोशिश से इताअत से जिद्दोजहद करके अल्लाह की रजा के काम करता है तो फरिश्तों से भी आला हो जाता है और फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन में शामिल हो जाता है। और फिर आप देखिए असफलुस साफिलीन में तो वही लोग जाते हैं जो मालिक का हक नहीं पहचानते। इंसान अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे हसीन है, इसलिए उससे मतलूब भी यही है कि वो सबसे खूबसूरत काम करे, बेहतरीन काम करे। फिर आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप अल्लाह सुबहाना ताला के इन मामलात को देखते हैं, आपका दिल गवाही देता है कि आप उसके आगे झुके। कितनी खुदकार मशीनें, फिर मेदे का स्टाइल देखिए पूरा, आप अपना निज़ाम हजम देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, नर्वस सिस्टम देखिए, आपके मेरे जिस्म के अंदर बाल बाल तार तार ऐसे गुंदा हुआ है। ये तो नहीं कि ये सांचा, हाँ एक रिवायत मिलती है कि जब अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो इबलीस जो था वो घूमता फिरता रहा, अंदर जाके देख आया, कहने लगा ये अंदर से खाली है, कुछ नहीं रहेगा इसके अंदर। یعنی غور و فکر نہیں کیا، اللہ کی تعریف نہیں کی، بلکہ اس وقت بھی اس نے اعتراضات ہی کیے. صرف اتنی سی سکل کو دیکھیے، جو چھوٹی سی کھوپڑی آپ کے میرے سر پہ رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر کیا کیا مشینیں چل رہی ہیں. سینے کو دیکھیے، پیٹ کو دیکھیے، ہاتھ کو دیکھیے، پاؤں کو دیکھیے، آپ کا سر جھکے گا. اتنی بڑی دنیا میں ایک چھوٹا سا انسان ایک پورا عالم اصغر بنا کر پیش کیا، تاکہ دیکھو کہ المصور جلہ و جلالہ کی کاریگری کیا ہے، کیسے وہ انسان کو یہ سارا کچھ دیتا ہے. تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پہ غور کرتا ہے نا، تو پھر اس کو المصور کی کاریگری اور بھی دکھتی ہے. کبھی پہاڑوں کے قدرتی مناظر ہیں، کبھی آبشارے ہیں، کبھی جھیلیں ہیں، کس قدر حسن اور آنائی سے بھری ہوئی، کیسے کیسے خوبصورت پھول ہیں. پھر اس کی مختلف پتیوں میں مختلف رنگ ہے. پھر اس کی پنکھڑیوں کو دیکھے، کبھی اپنے پیٹلز دیکھے گلاب کی پتیاں. سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد نازاں پہ کلام دل فریب بے اثر. تو بات تو یہی ہے، اللہ نے تو ہر رنگ بکھار دیا، اور آپ دیکھیے پھر ہر پتی ایک جیسی کٹی ہوئی، کٹنگ سٹائل دیکھیے. کوئی کتنی کینچیاں لا کر کہیں لوگ پھول بنائیں اور پھر بھی ویسے نہ بنے. کبھی دیکھیے بعض جگہ پہاڑوں پر اس طرح چھوٹے چھوٹے درخت لگے ہوتے ہیں، جیسے سبز رنگ کا قالین حد نگاہ تک بکھرو. پہاڑوں کے شگافوں میں گویا سچی چاندی بھری ہوئی ہے. پھر پہاڑوں پر برف کی صاف شفاف چھتیں یا المصور کی تصویر کشی کا ایک خوبصورت نمونہ پیش کرتی ہیں. پتھروں کو دیکھیے، پودوں کو دیکھیے، پھولوں کو دیکھیے، تتلیوں کو دیکھیے، اور جانوروں پر بنے ہوئے خوبصورت قسم کے نقش و نگار کو دیکھیے. کیا مناسب رنگ ہیں، کیا کلر کمبینیشن ہے. زبان پہ آتا فتبارک اللہ احسن الخالقین. آڑو کو دیکھیے، کبھی دیکھا پیچ کلر کا، کہیں سے پنک، کہیں یلو، کہیں ریڈ، کیا رنگوں کی آمیزش ہے. کبھی جنگلی کبوتر کو دیکھیے، بظاہر کالے سے ہیں مگر اندر سے فیروزی رنگ جھلکتا ہے. ہر جگہ کاریگری میں تناسب کا خیال ہے. جتنا غور کرتے ہیں آپ کا دل جھکتا ہے. اگر ہاتھی کی آنکھیں اس کے جسم کے مطابق ہوتی تو کوئی بھی دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا، وہ کتنا برا اور ڈرونا لگتا. اور اونٹ کی تو کوئی بھی کل سیدھی نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود وہ کتنا خوبصورت دکھتا ہے. تتلیوں کو دیکھیے، رنگ پرندوں کو دیکھیے، حیوانوں کی کھالوں پر بھی المصور نے کیا خوبصورت کشیدہ کاریاں کی ہوئی ہیں. اللہ اکبر، کبھی اب مور کے پر تو دیکھیے، اور ایک ہی پر کہیں سے زرد، کہیں سرخ، کہیں سبز، یہ سب مل کر ایک خوبصورت نمونہ بناتے ہیں. پھر ان رنگوں کی حفاظت کیسی، بارش میں بھیگے کچھ نہیں ہوتا، قدرتی وارنش لگا دیا، کلر چینج نہیں ہوتا. ہمارے تو رنگ اڑ جاتے ہیں تھوڑے دن بعد، کپڑوں کے، گھروں کے، فرنیچر کے. کون ہے جو ان کے رنگوں کی حفاظت کرتا ہے. لال بے کو دیکھیے، کیڑے مکوڑے کو دیکھیے، آپ دیکھیے گندگی میں پلنے والے، نمی میں پلنے والے جانوروں کو دیکھیے، چھوٹے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں کو دیکھیے، ان کا رنگ نہیں خراب ہوتا. اور جب ہم تتلیوں کے پروں پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اس میں خوبصورت تناسب دکھتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ پر جو گوٹے کناری کے بنے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے کیسے پیدا کیا ہوگا، کیسے کلمہ کن سے کیا ہوگا، کس نے نشان بنائے، کس نے نقطے لگائے، کس نے ڈوریاں پھیری. یہ فن کا ایک خوبصورت نادر نمونہ المصور کا کام ہے. اور ایک پھر بے نقص ترتیب اور تناسب کا احساس ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ قدرت آپ کو ہر چیز میں دکھتی ہے. کبھی زرافہ دیکھا آپ نے؟ کیا خوبصورت لمبی تنی ہوئی گردن اس کی، اور پھر اس کے اوپر خوبصورت قسم کا ڈیزائن چیتا ورک سا بنا ہوتا ہے. یہ سب کچھ کرنے والا المصور ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو زرافہ ہے نا، دوسرے جانوروں کی مانند ایک بڑا جامع اور خوبصورت ڈیزائن ہے اس کا، لیکن اس کی گردن لمبی ہے. اس کا دماغ اس کی لمبی گردن کے سب سے اوپر والے سرے پر ہوتا ہے. ذرا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے خون کو اس قدر اونچائی تک پہنچانے اور پمپ کرنے میں کتنی دقت پیش آ سکتی تھی. لیکن زرافے کی زندگی اپنی ساخت میں بھی آسانی سے گزر رہی ہے. جب وہ پانی پینے کے لیے جھکتا ہے نا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دماغ کی طرف خون کا بہت زیادہ ہو جاتا اور موت کا اندیشہ بھی ہوتا، لیکن اللہ نے اس کی گردن میں اتنا جامع، اتنا کمپریہنسو سسٹم فٹ کیا ہوا ہے کہ جب یہ جھکتا ہے نا، تو اس کی گردن کے جو مسام ہوتے ہیں نا، والز، وہ بند ہو جاتے ہیں. پھر اس کے سر میں بس اتنا ہی خون جاتا ہے جتنی اس کے سر کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تو اس بیچارے کا دماغ ہی خراب ہو جائے. کون کرتا یہ؟ کیا زرافے کے خد و خال اور یہ تدریج اور ارتقاء خود ہی ہو گیا، نہ کسی نے کوشش کی؟ نہیں، مان لیجئے، ماننا پڑے گا آپ کو. اور وہ کیا ہے کہ المصور کی کاریگری ہے.